ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संघीय संसद की संयुक्त बैठक को किया संबोधित। कहा, राष्ट्रीय एकता प्रवर्धन और आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए सबको एकताबद्ध होना होगा। प्रतिनिधि सभा के उपसभामुख पद पर श्रम संस्कृति पार्टी की सांसद रूबी कुमारी ठाकुर हुई निर्वाचित। ई पेंशन वेरिफिकेशन प्रणाली हुई शुरू। पेंशन नवीकरण के लिए अब बैंक में नहीं होना पड़ेगा उपस्थित। और भारत के वृंदावन स्थित यमुना नदी में नाव डूबने से कम 6 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने लोकतांत्रिक मूल्यों, मान्यताओं और आदर्शों को आत्मसात करते हुए सुशासन, विकास और समृद्धि की यात्रा में पूरे नेपाली जनता, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलों और राज्य संयंत्रों से एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। संघीय संसद की संयुक्त बैठक को आज संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक गणतंत्र को सुदृढ़ करने, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और आर्थिक समृद्धि के साझा लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि नए संसद में अभूतपूर्व रूप से युवाओं का प्रतिनिधित्व होना संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन प्रणाली में युवा पीढ़ी के आकर्षण, सहभागिता और नेतृत्व विकास का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने ये भी कहा कि नई सरकार से जनता सुशासन, जवाबदेही और पारदर्शी सेवा प्रवाह के साथ साथ देश के भीतर रोजगार के अवसरों की अपेक्षा कर रही है, इसलिए जनता की भावना और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संसद और सरकार को गंभीर होना चाहिए। राष्ट्रपति पौडेल ने संविधान के क्रियान्वयन के पिछले 10 वर्षों के अनुभव को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि अभी भी संविधान की भावना, मर्म और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप करने के लिए कई काम बाकी हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रपति के संबोधन के दरमियान बैठक में उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल के साथ ही संवैधानिक अंगों और सुरक्षा निकायों के प्रमुख सहभागी थे। प्रतिनिधि सभा के उपसभामुख पद पर श्रम संस्कृति पार्टी की रूबी कुमारी ठाकुर निर्वाचित हुई हैं। सभा की आज की बैठक में प्रस्तावक और समर्थकों की चर्चा के बाद हुए मतदान में ठाकुर भारी मतों से विजयी हुई, जिसकी घोषणा सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने की। मतदान में ठाकुर के पक्ष में 229 मत पड़े, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी की सरस्वती लामा के पक्ष में 5 मत पड़े। किसी भी उम्मीदवार को मत न देने के पक्ष में 22 मत पड़े। वर्तमान में प्रतिनिधि सभा में 275 सदस्य हैं, जिनमें से 256 सांसदों ने मतदान में भाग लिया। इसी बीच सभामुख अर्याल ने विजयी ठाकुर को बधाई दी। 26 वर्षीय ठाकुर को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन प्राप्त हुआ। बता दें कि आज रात 12 बजे से प्रतिनिधि सभा का पहला अधिवेशन समाप्त हो रहा है। ज्ञात हो कि आज ही राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की संसदीय दल की बैठक ने प्रतिनिधि सभा के उपसभापति पद के लिए श्रम संस्कृति पार्टी की उम्मीदवार रूबी कुमार ठाकुर के पक्ष में मतदान करने का निर्णय लिया था। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को दिए गए संबोधन की प्रतिलिपि को टेबल किया। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल ने बताया कि राष्ट्रपति द्वारा संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को दिए संबोधन के लिए धन्यवाद प्रस्ताव को सभा से सहमति प्राप्त हुई है। बैठक में सभाध्यक्ष दाहाल ने राष्ट्रपति कार्यालय से प्राप्त मंत्रिपरिषद के कार्यभार में बदलाव संबंधी पत्र का विवरण भी सदन में प्रस्तुत किया। उन्होंने ये जानकारी भी दी कि संयुक्त समितियों के लिए सदस्यों के मनोनयन को सभा से सहमति प्राप्त हुई है। प्रतिनिधि सभा की नवनिर्वाचित उपसभामुख रूबी कुमार ठाकुर ने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण की है। आज राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आयोजित एक समारोह के दौरान ठाकुर ने शपथ ली। उन्हें सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, राष्ट्रीय सभाध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह सहित अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों की उपस्थिति थी। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री पद पर गौरी कुमारी यादव और श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री पद पर रामजी यादव को नियुक्त किया है। आज ही नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री यादव और श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री रामजी यादव ने पद तथा गोपनीयता की शपथ ली है। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने दोनों नवनियुक्त मंत्रियों को शपथ दिलाई। बता दें कि गौरी कुमारी यादव महोत्तरी क्षेत्र नंबर 4 से निर्वाचित हैं, जबकि रामजी यादव सप्तरी क्षेत्र नंबर 2 से निर्वाचित सांसद हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने कहा है कि व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धंधे और आर्थिक गतिविधियों का विकास और विस्तार ही हमारी आर्थिक समृद्धि का मूल आधार है। नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 75वीं वार्षिक साधारण सभा एवं हीरक जयंती समारोह को आज काठमांडू में संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पोडेल ने ये बात कही। उन्होंने संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए जनता द्वारा चाही गई आर्थिक समृद्धि की दिशा में सभी को एकजुट होकर काम करने का आह्वान भी किया। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नए शैक्षिक सत्र 2083 की पढ़ाई वैशाख 21 से शुरू होगी। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केंद्र सानोठिमी के अनुसार नए शैक्षिक सत्र के तहत दाखिला अभियान वैशाख 15 गते से और पढ़ाई वैशाख 21 गते से शुरू होगी। सरकार ने वैशाख 15 गते से नया शैक्षिक सत्र शुरू करने का निर्णय लिया था, लेकिन दाखिला और पढ़ाई कब से शुरू होगी इस पर असमंजस के कारण केंद्र ने सूचना जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। शैक्षिक सत्र 2083 की कार्ययोजना तैयार करने, वार्षिक कार्यतालिका एवं शैक्षणिक योजना बनाने, विद्यालय सुधार योजना निर्माण और अद्यतन करने, शिक्षकों की पेशागत क्षमता विकास संबंधी कार्यक्रम संचालन करने और विद्यार्थियों की सीखने की उपलब्धि सुधार योजना तैयार करने के लिए केंद्र ने विद्यालयों को सूचित किया है। ये जानकारी केंद्र के निदेशक डॉ श्याम प्रसाद आचार्य ने दी। सरकार ने ई पेंशन वेरिफिकेशन प्रणाली लागू किया है। अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने आज पेंशन वेरिफिकेशन प्रणाली का शुभारंभ किया। इस प्रणाली के लागू होने के बाद अब हर 6 महीने में बैंक जाकर नवीकरण करने जैसे कार्य घर बैठे मोबाइल से ही किए जा सकेंगे। ये जानकारी अर्थ मंत्रालय के प्रवक्ता टंक प्रसाद पांडे ने दी। प्रवक्ता पांडे के अनुसार 3,50,000 से अधिक पेंशन होल्डरों को इस प्रणाली से सुविधा मिलेगी। वैदेशिक रोजगार विभाग ने विभाग के आसपास स्थित साइबर सेंटर और प्रशिक्षण केंद्रों को श्रम स्वीकृति संबंधी भ्रामक सूचना 30 चैत तक हटाने का निर्देश दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि श्रम स्वीकृति सिर्फ वैदेशिक रोजगार विभाग और निर्धारित श्रम एवं रोजगार कार्यालयों से ही प्रदान की जाती है। विभाग ने आज एक सूचना जारी कर कहा है कि इस विषय में भ्रम फैलाने वाले किसी भी प्रकार के लेखन और प्रचार प्रसार को तत्काल बंद किया जाए। विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्देशों के विपरीत कार्य करने पर वैदेशिक रोजगार आयन 2064 एवं अन्य प्रचलित कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने शनिवार और रविवार लगातार 2 दिन सार्वजनिक छुट्टी लागू होने के संदर्भ में स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर और प्रभावी रूप से जारी रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए संबंधित निकायों को निर्देश किया है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने अस्पतालों को रविवार के दिन अपने कार्यभार और जनशक्ति के आधार पर ओपीडी सेवा यानी बहिरंग सेवा संचालन करने का निर्देश किया है। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा करने पर कर्मचारियों को शनिवार के अलावा किसी अन्य एक दिन सहित कुल 2 दिन की छुट्टी देने की व्यवस्था की जाए और यदि छुट्टी देना संभव न हो तो सट्टा विदा यानी बदले में छुट्टी देकर सेवा संचालन सुनिश्चित किया जाए। संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रादेशिक अस्पतालों सहित सभी 7 प्रदेशों के स्वास्थ्य से संबंधित मंत्रालयों को भी इसी के अनुसार व्यवस्था लागू करने का अनुरोध किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के उत्तर प्रदेश के वृंदावन में केशी घाट के पास यमुना नदी में एक नौका दुर्घटना हुई है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 22 लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, लेकिन कितने लोग लापता हैं ये पता लगाने के लिए जांच जारी है। मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा, मथुरा के थाना वृंदावन इलाके में आज केशी घाट पर बड़ा हादसा हुआ, जब बोटिंग के दौरान पंजाब से आए श्रद्धालुओं की नाव अचानक पलट गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 1 दर्जन लोग घंटों तक लापता रहे। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह के मुताबिक नाव में पंजाब से आए करीब 30 लोग सवार थे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्टेल ने संघीय संसद की संयुक्त बैठक को किया संबोधित। कहा, राष्ट्रीय एकता प्रवर्धन और आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए सबको एकताबद्ध होना होगा। प्रतिनिधि सभा के उपसभामुख पद पर श्रम संस्कृति पार्टी की सांसद रूबी कुमारी ठाकुर हुई निर्वाचित। ई पेंशन वेरिफिकेशन प्रणाली हुई शुरू। पेंशन नवीकरण के लिए अब बैंक में नहीं होना पड़ेगा उपस्थित। और भारत के वृंदावन स्थित यमुना नदी में नाव डूबने से कम 6 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।